अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स. मैं हूं आपकी होस्ट सरोश. एज ऑल ऑफ यू कैन सी, वी हैव अ कंप्लीट न्यू सेटअप एंड वी रिवैम्प्ड द स्पेस. टेल अस हाउ यू फील अबाउट इट, कैसा लग रहा है आपको देख के. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू गेट इनटू द एपिसोड बिकॉज आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हर नेम इज़ बुराक शबीर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.
थैंक यू फॉर हैविंग मी.
कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक. गर्मी कैसी लग रही है लाहौर की?
बहुत बुरी.
बहुत बुरी. आई नो, आई कम्प्लीटली फील यू. थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगी लोगों को अबाउट यू अ लिटिल बिट. बाकी की डिटेल्स ऑफ कोर्स आप देंगी थ्रू आउट द एपिसोड. बुराक शबीर एक कल्चर, लाइफ स्टाइल और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं इन कराची. फनी, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट, बट खैर वील गेट इन टू इट लेटर. एंड आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू मीडिया, लाइफ स्टाइल, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म की दुनिया, डिजिटल मीडिया, एंड देर सो मच मोर टू गेट इन टू. सो लेट्स बिगिन. मैं सबसे पहले आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू. आपने मैंशन किया कि मार्च ऑफ दिस ईयर आपने ऑफिशियली एक डेकेड कम्प्लीट किया है ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म.
यस,
सो कूडोस टू यू. दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट, वर्किंग टायरलेसली, एंडलेसली इन एवरी अरीना टू मेक श्योर कि यू नो आप डेडिकेटेड हो टू योर फील्ड. सो दैट इज़ अ ह्यूज विन.
थैंक यू सो मच.
सो टेल मी, किस तरह था एक डेकेड अगो? व्हाट वाज इट लाइक द वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म? कि लोग उसको किस तरह व्यू करते थे बैक देन?
आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड, जैसे 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, शायद उससे 10 साल पहले भी और आज भी, ऑब्वियसली 10 साल बाद का आई कांट से मच. मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल बीइंग अ जर्नलिस्ट और वांटिंग टू बिकम अ जर्नलिस्ट और एंडेड अप एज अ जर्नलिस्ट, लाइक इन माई जर्नी इट वॉज वेरी अनप्रडिक्टेबल. There is always a certain, you know, एक reservation होती है इर्द गिर्द के लोगों को because of the, you know, stereotypical perception है media को लेके, journalism को लेके. तो वो एक लड़की, you know, going out there, working on the field, talking to people, screen पर आना है नहीं आना, it's like just being out there, वो already इतना ज़्यादा acceptable नहीं है क्योंकि due to some genuine and some not so reasonable reasons, I would say. सो ऐसे ही था कि पता नहीं मीडिया तो क्या चीज़ है. इनफैक्ट हम भी जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त ऐसे लगता था कि जिस द न्यूज़कास्टर जो आप टीवी पे देख रहे हैं या न्यूज़ एंकर देख रहे हैं, यही है और आधे से ज़्यादा आपके बैचमेट्स को यही बनना होता था. सो नाउ ऑफ कोर्स वी नो कि उसमें रिपोर्टिंग भी है, एडिटिंग भी है, सब एडिटर है आपका, कैमरा पर्सन है, एवरी वन इज़ अ जर्नलिस्ट बिकॉज जर्नलिज्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन सिंपली किसी भी किस्म का कॉन्टेंट क्रिएट करना. सो मेरी एज आई सेड कि बहुत अनप्रडिक्टेबल जर्नी थी, तो ऐसे नहीं था कि मुझे बचपन से जर्नलिस्ट बनना है और मेरे कोई इर्द गिर्द किसी का ये था कि नहीं अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरा तो एक पढ़ाई को लेके भी जर्नी अनप्रडिक्टेबल रही. सो आई एम अ मेमन, आई कम फ्रॉम अ मेमन फैमिली और जो मेरे एटलीस्ट पेटर्नल साइड पे स्पेशली था कि एजुकेशन वॉज नॉट रियली अ प्रायोरिटी स्पेशली फॉर वेमेन. और आज भी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि लाइक बहुत यंग एज में शादियाँ हो जाती हैं मेमनों में, या पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता, एंड देन यू बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, दैट्स लाइक एन अदर थिंग ऑल टुगेदर. सो पढ़ाई इन जनरल वॉज अ बिग थिंग, लेट अलोन जर्नलिज्म एंड मीडिया एंड स्टफ. सो वो करते करते, इनफैक्ट आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, सो वो तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट मेरी दुआओं से कि मास्टर्स मेरा पूरा हो जाए और कोई परफेक्ट रिश्ता बीच में आके मेरे ये डिग्री कहीं साइड लाइन ना हो जाए. बट उसके बाद फिर ये था कि मुझे बोलने का बहुत शौक है, तो मैं कुछ ऐसी ही चीज़ देख रही होती थी कि जिसमें मैं बोल सकूं. एंड टीचिंग एकदम से मुझे बोरिंग लगने लग गया कि फुल टाइम टीचर बहुत बोरिंग हो जाएगा. ऑल दो बचपन से मुझे टीचिंग का शौक था और अब मैं टीच भी करती हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी. लेकिन खैर सम हाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न एट अ इवनिंग डेली, एट एन इवनिंग डेली. और मैंने वो घर वालों को कि बस वो इवनिंग है तो सुबह ही जाना है, दोपहर में वापसी हो जाएगी, इंटर्नशिप है, सो मैं सीख लूँगी कुछ एंड ऑल ऑफ दैट. सो कन्विंस करके मेरे फादर को आई स्टार्टेड विद दैट. फिर उन्होंने जो है कहीं और रिकमेंड किया मुझे, तो द न्यूज़ में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न. फिर वहाँ से द डे आई जॉइंड, उस दिन समवन हैड रिजाइंड.
Oh.
So even though they got me, like पूरे 3 महीने की unpaid internship मैंने की, but ये था कि they need someone now. So if they like my work, तो they will offer me that job and I got that job offer. So there was no looking back. I didn't plan it, but then whatever kept happening one after the other, बस hard work पुट इन करती गई. मैं जब भी किसी को कहती हूँ कि प्लान नहीं किया था, अनप्रडिक्टेबल था, या इसके बाद ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, कोई गोल्स ऐसे सेट नहीं किए थे, लेकिन हार्ड वर्क ऑब्वियसली था. मैं डिनाई नहीं करूँगी कि अच्छा मैंने कुछ किया ही नहीं, आई जस्ट गॉट एवरीथिंग. सो इस तरह जर्नी रही. और मेरा मेरे घर में भी मुझे तंग करते हैं भाई और घर वाले भी, कि मैं एक एक कदम पे ना इधर उधर सबको कन्विंस करके, रिक्वेस्ट करके, मना के, आई गेट परमिशन टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू परसू, एंड दैट ब्रॉट मी हेयर, यू नो, अ डेकेड लेटर. सो या
आपने मेंशन किया, आई कुडंट हेल्प बट नोटिस के आपने अनपेड इंटर्नशिप की. इट्स वेरी अनकॉमन इन टुडेज टाइम के कोई ये कह सके. आप यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह ये एक शिफ्ट आई है फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू डिजिटल जर्नलिज्म, राइट? तो मैं जानना चाहती हूँ कि पर्सनली आपके लिए चेंज कैसा था, हाउ डिड यू टेक इट इन? प्रोफेशनली भी आप बताएं, बट पर्सनली मुझे ज़्यादा है कि ये जानना कि ये शिफ्ट आ रहा है, हाउ डिड यू टेक इट?
सो प्रोफेशनली तो यही था कि एक पॉइंट पे आके प्रिंट में लगने लगा था कि चीज़ें स्टैटिक हो रही हैं, एंड यू नो डिजिटल का ज़माना है जो कितने सालों से हम बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, बिकॉज देयर स्टिल सो मच दैट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड. सो आई वाज ऑल लाइक ऑन अ लुकआउट फॉर समथिंग कि क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के साथ मैं डिजिटल की तरफ स्विच कर सकूँ. तो आई वॉज हैप्पी वेन एवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सिंस आपने पर्सनली पूछा है कि पर्सनल फ्रंट पे मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे ना, कि प्रिंट में ही होता था कि बस उठ के आप चले गए किसी से भी इंटरव्यू करने, या कॉल पे कर लिया अगर कोई कवर स्टोरी, या कोई बहुत ऐसी स्टोरी नहीं है कि बैठ के उसके आपको यू नो साइट्स एंड साउंड्स इन सब देखना है, तो कॉल कर ली, कमेंट लिख, स्टोरी कंप्लीट हो गई, ये कर लिया, स्टोरी हो गई. डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत मार्जिन है आपके पास, जिसमें सिर्फ रिटन नहीं है, आपके विजुअल्स भी हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, जो कि अब तो विद टाइम बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है, और हम भी एज कंज्यूमर ऑफ न्यूज़ भी वीडियोज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो मुझे जो मौका मिला, फॉर्चुनेटली थोड़े ही टाइम में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन स्क्रीन, कम ऑन कैमरा, एंड दैट टू विद बीबीसी उर्दू. सो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए. सो उसकी वजह से ये हुआ कि वहीं से जब शुरू किया डिजिटल, उसमें तो अच्छा भाई कैमरा पे वीडियो को लेके चीज़ें, तो बात करते हुए आपका लहजा, आपका टोन, देन मेरे इंटरव्यूज़ में अक्सर मेरे साथ ही होता था कि जब मैं प्रिंट के लिए इंटरव्यू करती थी और घर आके या जब भी ऑफिस में मैं सुन रही हूँ ऑडियो, ट्रांसक्राइब कर रही हूँ, तो मैं बहुत बोल रही होती थी उसमें. जिसका इंटरव्यू है वो मैं, मतलब मेरा इतना लंबा सवाल आता था, क्योंकि मैं उसको कॉन्वर्जेशनल रखना चाहती थी, तो मैं अपना ओपिनियन भी दे रही हूँ, बात हो रही है, बट प्रिंट में मैं एडिट कर लिया, लिख लिया जो ज़रूरी उनके कॉमेंट्स थे. डिजिटल में, वीडियो इंटरव्यू में ये हुआ कि अगर इतना लंबा मैं सवाल करूँगी और जब वो एडिट होगा तो इतना टाइम तो मेरे सवाल ही ले लेगा, और इतने क्रिस्प इंटरव्यूज़ हम करने की कोशिश करते थे, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फीडबैक मिलने लगा कि मेरे क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस किया करूं. सो एक तरह से अच्छा था कि मैंने सीखा, हाँ स्पेसिफिक सवाल करूंगी तो स्पेसिफिक जवाब मिलेगा, बट दूसरी तरफ मुझे लगता था कि मैं अपना यू नो मैं आई एम नॉट एबल टू स्पीक माई माइंड कि इस सवाल के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है. बट देन वो एक लिमिटेशन के साथ साथ एक लर्निंग भी थी. देन अगेन आपकी अपीयरेंस की अगर बात करें आप वीडियो में, सो आपको देखना आपके बाल कैसे लग रहे हैं, आप स्वेट तो नहीं कर रहे, आपका दुपट्टा कैसे लग रहा है. ऑडियो में तो बस फोकस मुझे लगता था 100% जो है ना काम पे होता था. वीडियो में ये चीजें आई, एलिमेंट्स आए, तो फिर विद टाइम मैंने अपने आप को उसके लिए वो किया कि मैं अपना जो मैंने पहना है या जैसे भी मैं ड्रेसअप करना चाह रही हूँ, मैं उसमें अपना कंफर्ट रखूँ, ताकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेरा फोकस इंटरव्यू पर ही रहे, ना कि ये कि मेरे बाल ऐसे हैं या मेरा दुपट्टा ऐसा है. तो एक पॉइंट पे आके आई एम लाइक ठीक है, इट डजंट मैटर. फिर आप टाइम के साथ थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाता है. बाकी आई थिंक डिजिटल में पेस का एक एलिमेंट है. प्रिंट में बहुत आराम से एक एक खबर को अटेंड करने का मौका मिलता था, विच वॉज अ वेरी लाइक बिग प्लस, जो कि मैं अब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यूड बी लकी इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद प्रिंट. तो वो लर्निंग आपकी कहीं और प्रिंट जैसी नहीं होती, लेकिन ये है कि डिजिटल में आप इतना स्लो पेस नहीं हो सकते कि अब सुबह कल जाके पब्लिश होगा. बट इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज करती थी, किसी से बात करती थी, तो जब तक सुबह अखबार नहीं आएगा, हो सकता है शाम में दो तीन ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रिवील कर दिया हो या कुछ अपना वो कर दिया हो. सो अब आई एम हैप्पी कि जैसे ही मुझे कुछ एक्सक्लूसिव मिल रहा है, फर्स्ट इट गोज आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आई एम वर्किंग विद, और फिर पूरी दुनिया करती रहे, बट माई बायलाइन और माई फेस वुड बी देयर विद एन एक्सक्लूसिव थिंग. तो डिजिटल ऑब्वियसली वो एक अकम्पलिशमेंट फील होती है, क्योंकि प्रिंट में अक्सर बुरा लगता था मुझे कि मेरी एक एक्सक्लूसिव चीज़ अखबार में है, या मेरे अखबार की अगर इतनी रीच नहीं है ऑनलाइन, तो दूसरे जो अखबार हैं, दूसरे जो लेबल्स हैं, वो दो दिन बाद वो चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गेटिंग मोर माइलेज देन माइन, बिकॉज उसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं थी. सो आई थिंक एक जर्नलिस्ट के लिए आपका काम, अगर हमारा तो, हम तो लिखते ही लोगों के लिए हैं, हम उसमें तो नहीं लिखते कि बस मैं ही पढ़ूंगी और जिसका इंटरव्यू किया है वो पढ़ेंगे. सो आपको अगर माइलेज मिल रही है तो डिजिटल रियली गिव्स यू दैट बूस्ट, यू नो, मोटिवेट्स यू टू डू बेटर, कि योर स्टोरी वुड गो आउट देयर एंड वुड मेक अ डिफरेंस अगर आपने किसी चीज़ पर मेहनत की है.
आपने मेंशन किया कि यू नो कहते थे कि सवालात बहुत लंबे होते, डू यू नो व्हाई यू दैट यूज्ड टू हैपन फॉर यू? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई, दैट्स बिकॉज यू आर एन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स मेजर, मैं इंग्लिश लिटरेचर मेजर हूँ. मुझे याद है मेरे सवालात भी एक दौर में बहुत लंबे होते थे, एंड जब यहाँ पे इन योर लाइन, हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है और वो उसमें आके आपको बताया जाता है कि इसमें तुम्हारे दो सवाल निकल सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, दूसरे बंदे को कहाँ समझ आनी है कि आप क्या बात करना चाह रहे हो. तो आई अंडरस्टैंड वो वाला पार्ट. और उसके अलावा जो आपने बातें की उससे ये भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि किस तरह ये जो स्टोरीज़ का कॉन्सेप्ट है, न्यूज़ स्टोरीज़ हो गई या वैसी कोई स्टोरीज़ होगी ह्यूमन एस्पेक्ट जिनमें हो, देर सो एवरीथिंग इज़ सो क्विक. अगर आपने शाम तक, जैसे आपने कहा कि शाम तक कोई चीज़ ना लगाई, इट जस्ट द हाइप डाइज डाउन.
एग्जैक्टली.
तो उसकी अब पता ही नहीं चलता कि क्वालिटी ऑफ वर्क वेयर एग्जैक्टली इट लाइज, कि किस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करें. और उसी को कनेक्ट करते हुए, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और जो AI जनरेटेड कंटेंट है उसका मिसयूज़ बहुत कॉमन हो गया है. तो आपको लगता है कि इससे जो एक जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी है, क्या उस पर असर पड़ता है इस चीज़ से?
बिल्कुल पड़ता है जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी पे, बिकॉज हमारी तो क्रेडिबिलिटी डिपेंड ही इस बात पे करती है ना कि जो बात मेरे मुंह से निकली है या जो मेरे पेन से निकली है बात, उसमें सच्चाई कितनी है. सो अगर मैं वहीं पर यू नो चूक जाती हूँ किसी वजह से, किसी मिस इन्फॉर्मेशन का उसका या फैक्ट चेकिंग में किसी कमी की वजह से उसका शिकार हो जाती हूँ, तो फिर मेरी क्रेडिबिलिटी पे ही सीधी वो आएगी. अनलेस के एक प्रॉपरली यू नो फॉर्मुलेटेड सा एक लाए है जो क्यूरेट किया गया और मल्टीपल लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड वो शाया कर दिया और अगले दिन पता चला या बाद में पता चला, तो फिर तो ऑब्वियसली यू रिलीज वो कि ठीक है इट वाज नॉट ट्रू और समथिंग. बट वहीं पे हमारा काम एज अ जर्नलिस्ट आता है कि वेरीफाई करना. सो डिजिटल टाइम्स की सबसे बड़ी जंग ही यही है कि टाइमलीनेस और क्रेडिबिलिटी, उन दोनों को साथ लेके चलने के लिए. फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू वर्क विद पब्लिकेशंस जहां पे मैं चाहूँ भी तो मतलब थोड़ी सी भी वो नहीं कर सकती कि नहीं, अनलेस के सारी तरफ से मैंने बताया होगा कि वाई दिस इज़ ट्रू व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, वो पब्लिश होगी ही नहीं. या मैंने कोई लूप होल छोड़ दिया है तो एडिट के टाइम सवाल आएगा कि ये क्या वो था. सो यू नो आई वुड गेट टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी टू, कि हाँ मैंने उससे तो पूछा नहीं, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्टी के तीन रिप्रेजेंटेटिव से पूछूंगी तो वो तो प्रो बात ही करेंगे ना, अनलेस के मैं सामने वाली पार्टी से पूछूं. खैर दिस इज अ गिवन अनबायस्ड रिपोर्टिंग के लिए. लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ऐसा ही है कि जल्दबाजी के वजह से आप ये नहीं कर सकते कि वेरीफाई नहीं किया और बस मुझे पहले पता चल गया है. आई विल ऑल्सो कोट एन एग्जाम्पल, जैसे पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी वो हो रहा है कि फाइनली नेटफ्लिक्स पे हम देखेंगे पाकिस्तानी प्रोडक्शन, पाकिस्तानी एक्टर्स. सो मुझे किसी बहुत ही यू नो क्लोज और रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन पता चली वे बिफोर इट मेड यू नो हेडलाइंस एंड स्टफ, बट ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं था. सो मेरी पब्लिकेशन को मैं जितना भी कह लूँ दे डिडंट पब्लिश एनीथिंग, कि कल को कोई भी आके क्वेश्चन करेगा कि दिस इज़ फॉल्स, तो वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू बैक आवर क्लेम कि ये ऐसा है. उसके बाद भी एक एक अरसे के बाद, फॉलो अप्स के बाद, मुझे एक दो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड मिलते थे तो मैं उस ईमेल थ्रेड में फॉलो अप करती थी. आज तक वो हमने पब्लिश नहीं किया क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कुछ भी उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फैन पेजेस तो फेक पोस्टर्स बना के, या फेक नहीं, जितनी कास्ट का उन्हें पता चलता है उस सबके पोस्टर्स बना के सर्कुलेट कर देते हैं, आपको लगता है दिस इज न्यूज़. अब क्या है फॉर ऑल दोज फैन पेजेस, फॉर ऑल दोज फॉलोअर्स ऑफ दोज सेलिब्रिटीज, दोज एक्टर्स, उनके हिसाब से ये कास्ट है, ये प्रोजेक्ट है, स्क्रिप्ट है. हो सकता है वो 100% सच हो, हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आए किसी पॉइंट पे. तो द पब्लिकेशन, अ क्रेडिबल पब्लिकेशन वुडंट वांट कि कल कोई आके उनको क्वेश्चन करे कि आपने पब्लिश किया था, द कास्ट हैज चेंज नाउ. चेंज एज इन के फाइनल उसमें नहीं है, एंड द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म कैन ऑलवेज क्लेम कि हमने तो कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था, तो आपने किस बेसिस पे लिखा था.
True, it harms you in the long run.
Yes.
So that's why you need to be very careful when exactly. you make these important decisions. मैं इसलिए mention कर रही थी because मैंने कल ही पढ़ा था, someone wrote an article about the defamation bill जो pass किया है 20th May को पंजाब असेंबली ने, जिसमें उन्होंने mention किया है कि they will offer protection from false, misleading and defamatory claims जो कि आप through print, electronic और social media generate करें. So उस लिहाज से मैं बात करना चाह रही थी, बिकॉज द आर्टिकल ऑल्सो स्टेटेड कि किस तरह ये कोई टग ऑफ वॉर नहीं है बिटवीन जो सेंसरशिप होती है और फ्री स्पीच होती है, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आप अनफोल्ड अनलेयर कर सकते हैं. तो डू यू थिंक कि जर्नलिस्ट का रोल यहाँ पे अफेक्ट होता है विद दिस डेफेमेशन बिल? हाउ डू यू फील दे विल रिस्पॉन्ड टू इट?
आई थिंक जो हम प्रेस फ्रीडम की भी बात करते हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स अनलेस के आई हैव माय ओन प्लेटफॉर्म, इवन मेरा भी अगर एक अपना इदारा होगा जो पब्लिकेशन होगी, तो मेरे भी सर्टेन लिमिटेशंस या सर्टेन एजेंडास भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हु एंड वेयर आई एम, यू नो, किन डायरेक्शंस में मैं सर्व करना चाह रही हूँ पर्पस. लेकिन एज एन इंडिविजुअल के अलावा तो फ्री स्पीच है ही नहीं ना टेक्निकली. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे या तो मुझे बता दिया गया होगा या ऑलरेडी एस्टैब्लिश होगा कि इफ आई एम वर्किंग विद दिस नेम या दिस पर्सन या दिस पब्लिकेशन, दीज आर द थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, दीज आर द थिंग्स यू कैन नॉट इवन टच. तो आपको ऑलरेडी पता होता है. जैसे एक पॉइंट पे मुझे लगने लगा था एक जगह पे कि कुछ एक्टर्स हैं जिनको जैसे हम सेव कर रहे हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो मैं जब लिखती थी ना उस बारे में या उनके बारे में, तो मेरी नेचुरली ना टोन डाउन वो होता था, मतलब मैंने खुद ही टोन डाउन कर लिया होता था कि वो एडिट में तो टोन डाउन ही हो जाएगा. बिकॉज मैं हमेशा से आई थिंक एज अ पर्सन भी एंड एज अ प्रोफेशनल भी मैं बहुत इस तरह की रही हूँ कि आई वुड जस्ट से इट आउट थिंग्स द वे दे आर. सो जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो आई वॉन्टेड टू राइट एवरी थिंग जो हुआ हो. लाइक वंस आई कॉल्ड एन एक्ट्रेस और उनका काफ़ी रूड बिहेवियर था, तो मैंने लिख दिया आर्टिकल में कि लाइक व्हेन आई कॉल्ड हर तो दिस इज़ हाउ शी रिस्पॉन्डेड. बट जो असिस्टेंट एडिटर थी उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे थोड़ी लिखते हैं. मैंने कहा क्यों, लोगों को पता चलना चाहिए कि दिस इज़ हाउ दे टॉक या दिस इज़ हाउ शी टॉक्ड टू मी. देन आई इंटरव्यूड दिस वेरी बिग नेम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री और इंटरव्यू के दौरान द पब्लिसिस्ट द मैनेजर वॉज ऑल्सो सिटिंग एंड उनसे ज़्यादा वो जवाब दे रहे थे मेरी बात का. So that though I actually wrote, okay, you know, more than him, it was the manager who was talking or who was responding to my questions. So, toned down.
Suspicious laga mujhe ki wo itna bol nahi rahe the.
Kyunki unko wo ye tha na ki wo kuch galat ya aisa na bol dein, to let's just save this, baad mein kuch. So, khair, coming back to that, wo ki wo already toned down kiya hua hai, to aapki na kahin initial ड्राफ्ट ही अफेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड और कहीं ना कहीं वो एडिट हो जाएगा. तो वाई पुट इन ऑल दी एफर्ट्स? अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है, जैसे मैंने एक स्टोरी की थी एक दो साल पहले अभी जो पब्लिश ही नहीं हुई, कि वो पूरी स्टोरी कर ली, पिक्चर्स ले ली, लोगों से बात कर ली और एक उसकी कोई कड़ी रह गई थी. अच्छा, इनिशियली उस स्टोरी का एंगल कुछ और था, बट जो उसका आउटकम आया, मुझे एक कॉलीग ने कहा वो कभी भी पब्लिश नहीं होगी इस पब्लिकेशन में. मैंने कहा क्यों, उन्होंने ही मुझे बोला है ये करना है और सब. बट देन वो जिस तरह आउटकम आ रहा था, वो उनका जो कन्फ्लिक्ट था क्लियरली, यू नो, इंटरनेशनल पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, उन्होंने कहा तो मैंने कहा आप भी यही हैं, मैं भी नहीं हूँ, अगले साल जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी. हम वो एवरी ईयर किसी उस पर मिलते थे, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी. वो आज तक नहीं हुई है पब्लिश, 2 साल हो गए उस बात को कि वो पब्लिश ही नहीं हो सकती इस अखबार में. So, you know, that definitely affects your credibility and affects your, जैसे मैं performance की बात करूँ ना, कि पहले ही मेरे जहन में है
जी बिल्कुल
कि ये तो edit out हो जाएगा, what's the point? लेकिन यही है कि अगर मुझे इसी डोमेन में काम करना है, मुझे जर्नलिस्ट ही रहना है और पाकिस्तान में ही रहना है, तो उन सारी लिमिटेशंस के साथ आई वुड हैव टू समहाउ ट्राई टू पुश द एनवेलप टू जस्ट कीप मेकिंग एन इम्पैक्ट या एटलीस्ट कीप ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट. और लाइफस्टाइल और कल्चर बीट मुझे ये बहुत एक एज देती है कि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि इसके बारे में ये नहीं करना, उसके बारे में ये नहीं करना, जो जितना यू नो पॉलिटिक्स में अदरवाइज होता है. बट एक दफ़ा आज से काफ़ी सालों पहले किसी एक्ट्रेस के बारे में कुछ लिखा था, as you can already sense that I wouldn't shy away from writing anything जो कोई तारीफ ना हो उनकी. So we got a call from somewhere के मतलब आपने उनके बारे में लिखा है. So we were मेरे तो बहुत मतलब I was amazed, बहुत सालों पहले की बात है, अब तो शायद हम बहुत कॉमन हो गया और हम सब इस तरह की बात करते हैं. लेकिन उसमें यह था कि फिर हमने किया कि आपका डिफरेंट तरीके भी होते हैं. ओके, आई थिंक दैट कुड बी मोर रेलिवेंट टू वट वी आर टॉकिंग अबाउट. कि एक ये है कि भाई आपको कॉल आ रही है कि इसकी आपने बुराई क्यों लिखी,
ठीक है
एक आपको प्रेशर आ रहा है कि इसकी आपने सिर्फ तारीफ ही लिखनी है. सो आप, मैं ये करती थी जहाँ मतलब बहुत कोई मेजर लेवल पे ऐसे कोई थ्रेटनिंग या कोई बहुत प्रेशर वो नहीं था, लेकिन जहाँ वो था मैंने कहा कि मैं ये कर सकती हूँ कि लिखूँ ही ना, या तो क्योंकि जैसे एक दफ़ा मैंने किसी को ये जवाब दिया था कि आई हैड ओनली बैड थिंग्स टू से, तो आई रादर स्टेड क्वाइट. सो आई एम श्योर आपको बुराई नहीं सुननी होगी, तो इसलिए मैं झूठी अच्छाई नहीं कर सकती. तो दिस इज़ वन वे ऑफ गोइंग अबाउट समथिंग. या ये कि यू स्टार्ट विथ सम वो और फिर नीचे एंड में आपने अपना वो लिख दिया कि चलो ये भी हो गया और ये भी हो गया. बट डिनाय करना या राइटिंग एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ वॉट यू एक्चुअली फील, आई थिंक दैट वुड बी इनजस्टिस टू योर प्रोफेशन एज वेल.
अच्छा, दो और सवाल आपकी बातों से मेरे माइंड में आए. एक तो ये कि जब आप कहती हैं कि मैं अब नेचुरली ही टोन डाउन करके लिख लेती हूँ उनके हिसाब से, यू नो यू ऑलरेडी नो यू आर इक्विप्ड विद दोज टूल्स कि आपको पता है मैंने इस तरह लिखना है ताकि आगे जाके एडिटिंग में ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना हो और पब्लिकेशन वाले स्टेज पर वो पहुँच जाए, आपको नहीं फील होता एक फ्रस्ट्रेशन और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट नोइंग द सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर कि हु वॉन्ट्स टू रिफ्लेक्ट ऑनेस्टी थ्रू देयर वर्क, कि मेरी क्रिएटिविटी या मेरी एक विलिंगनेस होती है जो मुझे पुश करती है कि मैं ये काम करती रहूँ ये हसल करती रहूँ, तो डू यू थिंक इट अफेक्ट्स
यू? ऑफ कोर्स दैट अफेक्ट्स योर वर्क एंड योर मोटिवेशन. और इसमें जैसे था कि सेव कर रहे हैं किसी को या कोई किसी का दोस्त है या कोई किसी का कॉन्टैक्ट है तो पता है कि वो यू नो इट वोंट रीच टू दैट फाइनल वो. बट मुझे हमेशा इस चीज़ में ये भी लगता है, जैसे आई एम अ ज्यूरी मेम्बर एट दी लक्स स्टाइल अवार्ड्स, सो हम ज्यूरी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, बट जो आउटकम होता है हमें अक्सर लगता है कि शायद 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ठीक है, शायद इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने सबने अपना अपना वोटिंग की है और कोई फाइनल डिस्कशन ग्रुप में होके नहीं था तो मैं 100% क्लेम नहीं कर सकती कि आपने चिट में किसका नाम लिखा और मैंने किसका लिखा, लेकिन आपको एक आइडिया होता है. तो बड़ा होता था कि व्हाट्स द पॉइंट इफ इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, सिमिलरली व्हाट्स द पॉइंट अगर मुझे टोन डाउन करना है. बट देन आई फील लाइक कि इफ आई कंप्लीटली लीव एंड डोंट डू इट, तो जो थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट या थोड़ा बहुत भी रेजिंग योर वॉइस यू कैन डू बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पेन और बिकॉज ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट, यू लूज दैट टू. इसमें यह है कि जितना हो पा रहा है और जितना नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, बिकॉज इफ यू बैक ऑफ और इफ यू क्विट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वो, तो यू आर जस्ट नॉट एबल टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल.
ट्रू. और दूसरा ये था कि यू नो डू यू फील लाइक कि आज के दौर में भी लाइक बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट कोई डू यू सेंस के एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है बिकॉज ऑफ जेंडर, या डू यू फील लाइक कि नहीं अब वो दौर नहीं रहा कि हमारी लाइन ऑफ वर्क में देखा जाता है कि औरत मुझसे बात कर रही है या औरत मेरा इंटरव्यू ले रही है या स्टोरी कवर हो रही है? डू यू थिंक कि कोई अप्रोच अलग होती है जेंडर के लिहाज से या नहीं अब ऐसे नहीं होता?
मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है जो हमने व्हेन वी स्टार्टेड द कॉन्वर्जेशन, तो वो वाली चीज़ तो है कि अभी भी देयर वुड बी पीपल स्केप्टिकल ऑफ अ फीमेल जर्नलिस्ट कि क्यों ये फील्ड में जाना है और यू नो कोई टीचिंग और डॉक्टर कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन कर लो या इस टाइप की चीज़. वो तो मुझे लगता है कि हमेशा एक सर्टन चंक ऑफ सोसाइटी रहेगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, सबका एक वो रहेगा. सो आई थिंक एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, इन टर्म्स ऑफ जो हम पे डिस्पैरिटी है उस तरह की बात करते हैं, तो मैंने खुद भी और अपने इर्द गिर्द भी एज सच नहीं देखा कि फीमेल होने की वजह से आप सीरियसली ना लें, आप उनको यू नो इक्वली स्किल्ड होने के बावजूद भी उनका वो कॉम्पेंसेशन इक्वल ना हो. लेकिन जहाँ तक ये वाली बात है लोगों का ये नज़रिया कि एक फीमेल रिपोर्टर एंड ऑल ऑफ दैट, एज hard as it is for a lot of people to digest because of the same reasons, jis wajah se unhe lagta hai ki ye field achhi nahi hai agar khawateen ke liye, safe nahi hai, secure nahi hai, maine kaha na genuine or not so genuine reasons ki basis pe jo bhi lagta hai unhe, to phir yahi lagega ki kya main reporting kar rahi hu ya main field reporting road ke beech mein khade hokar, you know camera is on me and 10 people jo guzarne wale hain wo dekh rahe hain, to wo cheez to obviously bahut sare logo ko it doesn't sit well with them. But reporting ki बात आप करते हैं तो जैसे मैंने नोट किया उस दिन एक इवेंट हुआ, एक ड्रामे का लॉन्च था, तो जो फीमेल उसकी एक्ट्रेस थी,
आई नो दिस स्टोरी,
नो मैं
ओह इट्स अ डिफरेंट स्टोरी,
आई डोंट नो व्हाट स्टोरी यू नो बट
ओके
नहीं, सो जो फीमेल एक्टर थी वो काफी लेट आई, ठीक है, और फिर बस उनको थोड़ी देर में जाना था. सो मुझे जो है ना अपनी स्टोरी में एक फीमेल वॉइस चाहिए थी क्योंकि मैं उनके दो मेल लीड से बात कर चुकी, प्रोड्यूसर भी मेल थे, डायरेक्टर भी मेल थे, सो आई रियली वांटेड दैट हर प्रेजेंस ऑन कैमरा एंड शी वाज आल्सो लाइक यू नो अ नोन नेम, तो ये भी था कि मुझे बात करनी है. इनफैक्ट आई कैन टेक द नेम आयशा उमर आई हुई थी, ठीक है, और मुझे था कि पब्लिकेशन, क्योंकि मेरे दिमाग में था क्योंकि जहाँ टोन डाउन करने में इस तरह की लिमिटेशन है वहाँ अच्छी चीज़ें भी आपको याद रहती हैं कि दे वुड टेल मी के बुराक लाइक यू डिडंट स्पीक टू एनी ऑफ द फीमेल कास्ट मेंबर्स एंड स्टफ, सो आयशा आई एंड जस्ट शी वांटेड टू रश और बस वो जा रही थी, तो ऑल द कैमरा पर्सन और जो हमारा इस तरह मीडिया और माइक और सारे होते हैं कि 10 माइक लगे हुए हैं, वो एक ही कमेंट 10 चैनल पे चल रहा है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट समथिंग माय पब्लिकेशन वुड एक्सेप्ट. सो मैंने यू नो बीइंग अ फीमेल, मैंने वो लिबर्टी ली कि उनसे परमिशन लेके मैं फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में थोड़ा सा करीब उनके हो सकी कंपेयर टू ऑल द मेन अराउंड, कि आयशा इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैंने थोड़े ही दिनों पहले उनका एक वन ऑन वन इंटरव्यू किया था, तो शी रिकॉग्नाइज एंड आई वाज लाइक कि आपसे कमेंट ले सकती हूँ, कैन आई हैव 2 मिनट्स, और उन्होंने मुझे अलाउ किया, मैंने उनसे परमिशन लेके माइक लगाया और 2 मिनट मेरे लिए काफ़ी थे. और सब सिर्फ देख रहे थे और सब वो रिकॉर्ड कर रहे थे जो भी कर रहे थे, बट देट वॉज फॉर माई वो माई एक्सक्लूसिव कॉमेंट एंड देन शी वॉज जस्ट लीविंग. तो मुझे लगा कि अगर मैं इस वक्त कोई मेल रिपोर्टर होता तो मुझे 10 चीजें सोचनी पड़ती बिफोर गेटिंग क्लोज. तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू द ऑपोजिट जेंडर, मैं भी 10 दफा सोचती उस हुजूम में जाने के लिए जहां सिर्फ मर्द हजरात होते और मुझे तक एक कमेंट ले लूं. तो मैंने बहुत ज्यादा सिचुएशंस में अपने आप को उस हुजूम से दूर रखा है, ऑब्वियसली फॉर माई सेफ्टी
ऑफ कोर्स.
तो वो लिमिटेशन मेरे एंड से मैंने खुद अपने लिए वो ड्रॉ की है, बट अदरवाइज इस तरह मैं नहीं, मतलब मुझे मतलब इट्स मोर ऑफ एन एज. इनफैक्ट कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें खवातीन से बात करनी है तो मेरे कुछ मेल कॉलीग्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साथ में चल सकती हैं, बिकॉज वो दूर से ही वो देखेंगे, एक्सक्यूज करेंगे, तो खवातीन रिलक्टेंट होती हैं बात करने में मुझसे. तो यू नो अगर एक मेल से बात करनी है तो वो भी मैं उनकी तरफ जाऊंगी तो आराम से मुझसे बात कर लेंगे, एज इन सलाम दुआ करके, यू नो आई कैन इनिशिएट. और एक खातून भी कम अज कम कि अच्छा मैं बोल कह रही हूँ सुन लेंगी बिफोर अग्रीइंग कि वो कैमरा पर बात करेंगी या नहीं. सो आई थिंक इट हेल्प्स. और फीमेल रिपोर्टर्स क्योंकि कम होती हैं फील्ड रिपोर्टिंग में, मतलब जो प्रॉपरली रिपोर्ट पे काम करना और चीज़ें करना, तो आसानी है मेरे ख्याल से. और मेल रिपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब स्पेशली हम ये वॉक्स पॉप्स और इस तरह आम लोगों से बात करनी होती है, इतनी देर तो पहले तमीज माननी पड़ती है कि आप हैं कौन.
सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल. जब आपने काम करना शुरू किया विद BBC उर्दू उनके लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के तौर पर, तो उस टाइम पे इट वाज नॉट समथिंग जो बहुत ज़्यादा वाइडली कवर हो रही थी जब आपने शुरू में काम करना शुरू किया, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं ये लीप ऑफ फेथ ले रही हूँ, ऐसे टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, या फिर आपने फोरसी कर लिया था कि ये जो तरीका होगा स्टोरी टेलिंग का ये अपीलिंग हो जाएगा एक टाइम पर आके?
नहीं नहीं, इतनी मेरी फार साइट होती है तो पता नहीं मैं कहाँ होती. बट आई थिंक अगेन जैसे मैंने कहा ना कि मेहनत करते गई, लेकिन जो जो चीज़ें या एक एक छोटे छोटे से करके माइलस्टोन या अचीवमेंट जो भी आप बोलें वो होता गया. आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड वर्किंग इन माई फेवर कि जब मैंने द न्यूज़ में स्टार्ट किया एंटरटेनमेंट मैगजीन में, तब तो बिल्कुल बहुत कम रुझान था इस तरफ. तब लाइक इट वुड बी मोर फोकस्ड ऑन कि हम लोग वो ब्यूटी स्टेशन करके हमारा एक सेगमेंट होता था जिसमें कोई स्किन केयर या मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कमेंट्स लेके वो करना है, वो पेजेस अंदर के दो जो लाइफस्टाइल के
अच्छा,
हैं
अच्छा.
फिर वो कोई रेड कार्पेट की पिक्चर्स वो जाएंगी कि अच्छा इस हफ्ते क्या क्या इवेंट्स हुए और लोगों ने क्या क्या पहना था. अब बात करके ऐसा लग रहा है इट्स ऑल सो फ्लफ, बट दैट्स हाउ ऑब्वियसली फैशन पेजेस में यही होता है ना, लुक्स पे कमेंट करना. आई वॉन्ट से फ्लफ फ्लफ, बट हाँ फैशन उसमें यही है.
जो
फैशन बीट पे लिखते हैं तो वो रिव्यू करते हैं ऑब्वियसली अटायर्स एंड एवरीथिंग. अभी जैसे स्टाइल अवार्ड्स एक हुए थे तो उसमें यही हुआ था.
सोशल मीडिया पे अब होती है exactly. चीजें.
सो वो सारे होते थे कि अच्छा इतने पेजेस हैं तो उसमें यही आना है सब आना है. उसमें ऐसा था कि आई समहाउ आई वाज राइटिंग ऑन टीवी एंड थिएटर.
ओके
ठीक है. और ये मैं बात कर रही हूँ 2016 ऑनवर्ड्स. सो टीवी पर उस वक्त कोई लिखता नहीं था एज सच, ठीक है. और मैंने लिखना शुरू किया, मैं टीवी मतलब मैं देखती थी ड्रामे, मैं क्रिटिक लिखती थी, रिव्यूज़ लिखती थी. एंड हमारे जो उस वक्त स्टैट्स हमें बताए जाते थे ऑनलाइन उसके लाइक 2016 में, तो उन्होंने कहा कि ये फैशन ये म्यूज़िक जो भी आपका सारा कंटेंट है ना, द टीवी वन इज़ द मोस्ट यू नो रेड. सो टीवी हैज सच अ मास अपील पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामाज स्पेशली.
बिल्कुल.
सो समहाउ वो वहाँ से बिल्डिंग ईयर्स में ये हो गया कि मेरे एडिटर ने मुझे कहा कि मैं अच्छा लिखती हूँ टीवी पर या थिएटर पर अच्छा लिखती हूँ. उस वक्त थिएटर भी काफ़ी एक्टिवली हो रहा था प्री कोविड. सो उन दोनों पे लिखते लिखते वो टीवी रिव्यूज लिखना शुरू किए एंड देन यू नो अदर पब्लिकेशंस, आई डोंट नो मैं नाम ले सकती हूँ पब्लिकेशंस के या नहीं, बट ये कि अदर पब्लिकेशंस स्टार्टेड राइटिंग एज वेल. तो सबको वो दिखने लगा कि टीवी में एक बूम आ रहा है. इनफैक्ट एक इवेंट हुआ था, एक ड्रामे का जंकेट या कुछ था, तो उन्होंने स्लाइड शो में मेरा रिव्यू जो है दे यू नो रैन द रिव्यूज. आई वॉज सो हैप्पी उस वर्क के यू नो इतना कम है इस पर लिखा हुआ कि दे गॉट माइन एंड आई सॉ माई बाय लाइन एंड स्टफ. तो वो करते करते फिर यू आई स्टार्टेड गेटिंग जॉब ऑफर्स एज वेल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कि टीवी पर लिखने वाला हमें कोई चाहिए क्योंकि टीवी इज़ द थिंग एंड ये. तो वो करते करते सारी चीज़ें हुई, फिल्म, फैशन, सारी चीज़ें, फिर फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे जो पाकिस्तान में आती जाती रहती है, तो फिल्म पे भी किया बट टीवी साथ में कॉन्स्टेंट रहा. फिर ये था कि जिस ग्रुप के साथ आप होते हैं, जिस पब्लिकेशन का जो भी ग्रुप है, उनका एक अपना चैनल है, तो फिर दूसरे चैनल पर लिखना. उस वक्त मैंने बहुत धड़ल्ले से आई वुड से डिफरेंट चैनल्स पे बहुत तारीफी रिव्यूज लिखे हैं, क्योंकि एक चैनल के ड्रामे इतने ज्यादा अच्छे टॉपिक्स वो हाईलाइट करते थे और मुझे वो कहते भी थे कि यहाँ पे रह के दूसरे ग्रुप की उन पे कैसे लिख रही हो. मैंने कहा अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया, किसी दिन आएगा मैनेजमेंट से तो उस दिन रुक जाएंगे. अच्छा, मेरा इस तरह की अप्रोच थी कि जब तक कोई नहीं बोल रहा, लेट जस्ट कीप डूइंग इट ना, जितना हो जाए, नेक्स्ट टाइम मना कर देंगे ना, अभी तो कर लें. सो वो मुझे अच्छा टाइम मिला उस वक्त इतना, क्योंकि डिजिटल पे होता नहीं था, आपस का कॉम्पिटिशन उनको बॉदर नहीं करता था कि आप कैसे लिख रही हैं हमारे अखबार में ये वो. फिर ये आती थी मुझे ऊपर से कॉल कि एटलीस्ट अपने चैनल के ड्रामों की बुराई मत लिखिएगा. तो मैंने कहा फिर मैं बायलाइन नहीं लूंगी अगर मुझे अच्छा ही लिखनी है, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर गुड एंड आई डोंट वॉन्ट दिस टू रिफ्लेक्ट ऑन माई क्रेडिबिलिटी. एनी वे, सो वो टी वी के साथ बाकी चीज़ें सब मैंने की, 5-6 साल जब काम किया प्रिंट में. उसके बाद वेन द BBC थिंग स्टार्टेड, तो सम हाउ इट बिकेम अबाउट टीवी ड्रामों में काम करने वाले जो अदाकार हैं उनके इंटरव्यूज.
अच्छा.
क्योंकि टीवी ड्रामे इतने देखे जाते हैं, BBC की अपनी एक बहुत मास ऑडियंस है, देन इट्स उर्दू. तो पढ़ा लिखा अनपढ़ हर एज की औरत स्पेशली या मर्द भी जो भी ड्रामों में या अदाकारों में इंटरेस्टेड है उसको वो इंटरव्यू समझ आ रहा है.
Yes.
So, आज एक ड्रामे में कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई, पैमरा ने कोई नोटिस जारी कर दिया, कोई अच्छी बात हाईलाइट हो गई ड्रामे में, कोई सोशल मीडिया पे हाइप हो गई, अगले दिन उसका इंटरव्यू लाइन अप करके कर लिया. तो एक प्लेटफॉर्म बड़ा था जिसके लिए इंटरव्यूज कर रही थी, देन टीवी के इंटरव्यूज, तो टीवी का एक अपना मास अपील, एंड बोथ दीज थिंग्स कंबाइन रियली हेल्प मी स्ट्रेंथन माय पोर्टफोलियो एंड बिल्ड माय सेल्फ लाइक सम क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टीवी क्रिटिक के उससे. सो आई एम ऑल्सो जूरी मेंबर एट द स्टाइल अवार्ड, जैसे मैंने आपको मेंशन किया. तो वन आफ्टर द अदर टीवी रिलेटेड चीजें होती गई जिससे मुझे पता चलने लगा कि टीवी खुद इतना बड़ा है और उससे जुड़ने की वजह से इट रियली हेल्प मी एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन, मतलब यू नो, स्टैंड आउट अ बिट इन दिस वे. और फिर तो हर कोई भाग ही रहा था टीवी के पीछे, अब तो टीवी ही टीवी है, टीवी ड्रामे ही हैं. सो आई वाज हैप्पी कि तब से कर रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने में आसानी हुई, ना कि अब ये कि हर कोई आके अपना एक प्लेटफॉर्म वो करके टीवी रिव्यूज करने लग गया. मुझे भी सब लोग कह रहे थे व्हाई डोंट यू डू इट, व्हाई डोंट यू डू इट, सो मे बी, बट या हो सकता है, नॉट दैट आई सॉ इट कमिंग द टीवी थिंग, लेकिन इट रियली लाइक समहाउ वर्क्ड वेल.
Yeah, I think fate became your best friend. क्योंकि तक आप करती ना एक्सप्लोर, आपको पता ही नहीं चलता.
क्योंकि थिएटर कोविड आया तो एक डाउनसाइड आया, फिर दोबारा रिज्यूम हुआ. म्यूजिक और फैशन में मैं बहुत ज्यादा शुरू से नहीं इतना लिखती थी, क्योंकि एक सेपरेटली यू नो म्यूजिक बीट पे यू नो देयर वाज दिस कॉलीग ऑफ माइंड जो ज्यादा उस पर करती थी. फैशन में भी मैंने उस तरह से मतलब ट्रेंड्स देख लिए, बट राइटिंग या क्रिटिकिंग यू हैव टू हैव अ सर्टेन इंटरेस्ट एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग.
उनकी भी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती
है. एग्जैक्टली. सो वो टीवी थिएटर फिल्म में मैं कर रही होती थी अक्सर, और जिसमें टीवी सबसे मेजर वो रहा, तो दैट really helped.
इससे एक और बात भी मेरे माइंड में, ये थोड़ा उस तरह करके है बिकॉज ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एट होम. सो यू नो हाउ आजकल जो एक्टर्स वगैरह हैं, नॉट एवरी प्रोमिनेंट, आई एम नॉट टॉकिंग के फवाद खान और सजल अली लेवल टाइप, उस तरह नहीं, बट जो ड्रामाज में आपको देखने को मिलते हैं कि जिसने किसी तरह कभी वो रोल अदा करे, यू नो कि काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी ड्रामेटिस्ट हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड कि वो एक पहले तो एक मीडियम होता था वेयर यू एज अ मीडियम कुड शेयर के क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, व्हाट देयर लाइफ इज़ लाइक, बिकॉज फॉर पीपल एट होम जिस तरह माई मदर फॉर इंस्टेंस, और लाइक जो देख रहे होते हैं ड्रामे वगैरह बैठ के, और उनके लिए होता था कि हमें आपके थ्रू पता चलेगा इनकी लाइफ के बारे में. इट्स वेरी अपीलिंग टू नो कि जो ऑन स्क्रीन है उनकी लाइफ कैसी है और लाइक किस तरह का वो काम कर रहे हैं फ्यूचर में. अब विद यू नो द वाइड स्प्रेड ये जो हो रहा है कि सबके चैनल्स हैं, किसी ने अब खोल लिया, एंड तो वो एक डू अंडरस्टैंड कि वो एक कट गया है, तो आप डायरेक्टली उधर जा सकते हो, बिकॉज आई सी माई मदर वॉचिंग देम, तो उनको ऑलरेडी पता होता है, इट्स वेरी कन्वीनियंट. यूट्यूब अब किसको नहीं चलाना आता. सो डू यू थिंक इससे थोड़ा अफेक्ट होता है योर लाइन ऑफ वर्क, और नॉट रियली, आपका अरीना बिल्कुल डिफरेंट है कवर करने का टॉपिक्स को?
बिल्कुल अफेक्ट करता है, और अफेक्ट ऐसे करता है कि इट कीप्स यू ऑन योर टोस कि अब कुछ आपने ऐसा नया लेकर आना है, नया सोचना है, नए एंगल से, पर्सपेक्टिव से इंटरव्यूज करने हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो पहले आपको लगता था कि आपके एक्सेस के थ्रू लोग देख पा रहे हैं. जैसे मैं हमेशा यही कहती थी और मैं जब पिच भी करती हूँ स्टोरी आइडियाज़ पब्लिकेशंस को कि यू नो हमें एक्सेस है, लोगों को बहुत शौक होता है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का ये देखना वो देखना, वो सारी बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें, सो दे वुड इन्जॉय और वील गेट यू नो गुड अट्रैक्शन ऑन दोज थिंग्स. अब ऑल्सो विद यू नो पॉडकास्ट में एक अलग तरह का कॉन्टेंट होता है, जिस तरह वो एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन होती हैं. देन जो सेलिब्रिटीज के खुद के अपने टिकटॉक चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे उनके फैंस को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. सो नाउ यू हैव टू थिंक एज अ जर्नलिस्ट वट इज समथिंग दैट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल,
एंगल आपका क्या होगा,
व्हाट्स न्यू. खुद भी मैंने कुछ कोशिश की है कुछ हद तक लाइन ड्रॉ करने की कि ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कॉन्टेंट क्रिएशन से हटके जर्नलिज्म, क्योंकि हर तरह का कॉन्टेंट क्रिएट करना ही है अगर एक अम्ब्रेला टर्म हम यूज़ करें. बट एज अ जर्नलिस्ट आई थिंक एंड बीइंग फॉर्चुनेट वर्किंग विद सम नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जहाँ पे मुझे कोशिश करने का मौका मिला कि वो एथिक्स वो डायनामिक्स, तो मैंने देखा है कि जर्नलिज्म कोई अलग ही चीज़ है. यू कैन नॉट ब्लर द लाइन्स बिटवीन ब्लॉगिंग व्लॉगिंग और जर्नलिज्म. अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन मैं लोकल और इंटरनेशनल को भी जब कंपेयर करती हूँ तो होता है कि इतनी मिस रिपोर्टिंग हो रही है, इतनी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्टिंग हो रही है, और इंटरनेशनल एक दो प्लेटफॉर्म्स में पुश किया जा रहा होता है कि अच्छा आपने इससे ये पूछा था या उसने आपको ये बताया था, डिड यू स्पेसिफिकली आस्क, डिड ही एक्चुअली से दैट. सो वो करते करते ऐसे हो गया कि हर तरफ से ना वो आपको कोई लूप नहीं छोड़ना. तो मुझे फिर एहसास होने लगा है कि इतना हल्का नहीं लेना चाहिए जर्नलिज्म को. सही मानों में अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं ना तो इट्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट एवरी पर्सन, बस एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आप उठ के जर्नलिस्ट नहीं बन सकते.
ट्रू ट्रू, क्योंकि आपकी इस बात से ज़्यादा है कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगी, बट वैसे ही आई वाज जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग एंड अब मुझे नहीं पता शायद उन्होंने ऑन साइट जाके रिपोर्ट अपनी कलेक्ट की हो, डेटा कलेक्ट की हो क्रेडिबल सोर्सेज से, बट दिस वॉज अ वाइट वुमन रिपोर्टिंग ऑन वट एवर वॉज हैपनिंग इन अ प्रीडोमिनेंटली साउथ एशियंस, वो साउथ एशियन कंट्री, तो अब वो कोई भी हो सकता है. आई एम कीपिंग द सस्पेंस अलाइव, बट उनके बारे में बात हो रही थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द कमेंट्स वर, अब मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है क्योंकि मैंने ज़्यादा, बिकॉज आपको पता है सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, कौन इतनी बैठ के गूगल करता है कि क्या सही है क्या गलत. तो वो ये कह रहे थे कि आपको कहाँ से मिली है, आपके सोर्स क्या हैं, आप किस तरह क्रेडिबिलिटी अपनी ऑफर कर सकते हैं, आपने चेक किया, आपको पता है हमारे हालात. लोग अपना प्रॉपर्ली अपने आप को कोट करते थे कि मैं इस जगह से हूँ, हमारे तो ऐसे कोई हालात नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
एग्जैक्टली.
तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, स्पेशली अगर आपने क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बात की, तो हाँ ये थोड़ा ज़्यादा आप कॉन्शियस होते हो उस चीज़ को लेकर.
बहुत सारी ऐसी प्रिंटेड पब्लिश्ड स्टोरीज देखी हैं कि वो स्टोरी देख के लाइक मैं खुद वो देख के कि मैं भी इस पर कुछ करती हूँ. ठीक है,
ठीक है,
एक्सक्लूसिव किसी और ने कर ली बट वी वांट टू डू समथिंग. एक्चुअली उस जगह पर जाओ और चार लोगों से बात करो तो पता चलता है कि इतना सा पोर्शन जो आपको देखने को मिला उसमें आधी दफ़ा तो सच्चाई नहीं थी, आधी दफ़ा कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था, एंड एक्चुअली मे बी देर इज नो स्टोरी एट ऑल.
यस, ट्रू.
सो या,
तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरी आपने जो कवर की हो, जो आपको दैट स्टेड विद यू, होता है कि आपको होता हो, आपको फील हुआ उस मोमेंट पे कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कवरिंग दिस एंड आई गॉट अ चांस टू कवर इट और रिपोर्ट ऑन इट, एंड इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कोई ऐसी.
अच्छा, लाइफस्टाइल और कल्चर उसमें ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ या उस तरह की चीज़ें होती तो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सटेंसिव फील्ड रिपोर्टिंग इतनी नहीं हुई है कि मैं एक इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस या टॉपिक कोई रिपोर्ट वो करूँ. बट मैं अपने ही उससे बताऊँगी एज इन टर्म्स ऑफ द इंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल साइड कि मैंने बीबीसी के साथ लाइव किया था एक. It was a 9-minute long live with an actor जो कि वैसे इंटरव्यू दे नहीं रहे थे, अहमद अली अकबर. सो परिजात बहुत हिट हुआ था एंड यू नो पीपल रियली वांटेड टू हेयर फ्रॉम अहमद अली अकबर, लेकिन वो वैसे भी कम देते हैं इंटरव्यूज.
जी जी.
तो उन्होंने, मैंने उनको रीच आउट किया तो उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू गिव इंटरव्यूज लेकिन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक प्रोजेक्ट में आते हैं तो पूरा आपका एक वो होता है कमिटमेंट. तो मैंने कहा जब देना पड़े तो मुझे बताइएगा. लेकिन वो कभी वो वक्त नहीं आया कि उन्होंने मुझे बताया. बट देन आई गॉट टू नो कि लाहौर में ही लास्ट एपिसोड स्क्रीन हुई थी सिनेमा में, पब्लिक के लिए भी थी और मीडिया नाइट भी थी, एंड देन द कास्ट वाज देयर, अहमद वाज देयर, और मैं लाहौर आई हुई थी उस वक्त किसी और इंटरव्यू करने के लिए. सो माई मदर टोल्ड मी कि स्क्रीनिंग वहाँ होनी है लाहौर में. सो देन आई पिच्ड इट टू द पब्लिकेशन एंड उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेट इज़ वर्किंग सो लेट्स डू अ लाइव. अब आई वॉज एंक्शियस, आई वॉज नर्वस, और के मतलब मैं अपने कोई प्लेटफॉर्म से छोटे मोटे से नहीं, मतलब बीबीसी लाइव करना है, सो देयर वुड बी सो मेनी पीपल वॉचिंग. फिर मैं कोई बात करती हूँ, आई थिंक हम सभी कोई बात करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन से सब पता चल रहा होता है. सो लाइव मैं अपने आप को याद दिलाना कि ये लाइव है,
रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते.
एग्जैक्टली. سو خیر وہ پہلے تو احمد کی جو فین فالوئنگ اور اس وقت تھی اتنا کریزی کراؤڈ تھا کہ گیٹنگ ہولڈ آف ہم بٹ دین یو نو بس آئی اسٹیڈ انٹل دی اینڈ اینڈ آئی واز لائک احمد آئی جسٹ نیڈ ٹو منٹس سو ہی واز لائک ایک منٹ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جسٹ ایک منٹ یو نو وی وینٹ لائیو اینڈ دین اٹ وینٹ آن فار لائک نائن گڈ منٹس اور ڈفرنٹ کاسٹ ممبرز پروڈیوسرز آئی اسپوک ٹو آل آف دوز مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں احمد سے بات کر کے یہاں کون کھڑا ہے یہاں کون کھڑا ہے بیچ میں لوگ ان کے ساتھ سیلفیز لینے آ رہے ہیں تو نہ آپ غصہ کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ اور بول سکتے ہیں پھر آپ اچھا میں پوری ایک کامنٹری کر رہی تھی نا تھرو آؤٹ کہ جب کوئی بات کر رہا ہے میں ایکسکیوز کر رہی ہوں کہ کین آئی ہیو یور کامنٹس اور اس بیچ میں لائیو میں یو کانٹ گو کوائٹ مجھے کوئی اس طرح سے پریکٹس یا کبھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا لائیو رپورٹنگ کا یا اس طرح کا تو میں بیچ بیچ میں کہ اچھا یہاں پہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں پیپل آر ایکسائٹیڈ دس دیٹ پھر آئی ایکسکیوزڈ کو ایکٹر نعمان اعجاز تھے وہاں پہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایکسکیوز کیا وہ پروڈیوسر سے بات کر رہے تھے میں دوسری دفعہ ایکسکیوز کیا اٹ واز لائیو اینڈ آئی واز فیلنگ لائک کہ تیسری دفعہ بھی نہیں جواب دیا تو بہت ہی بزی ہو گیا تو پھر میں نے ایکچولی کہہ دیا لائیو اس پہ میں نے کہا لیٹس سی نوان صاحب ہمیں جواب دیتے ہیں نہیں اب اینڈ دی تھرڈ ٹائم یو نو ہی ریسپونڈڈ کہ ہی واز ٹاکنگ ٹو سم ون اور لائیو تھا تو یو نو یو ڈونٹ ہیو ا لاٹ اف روم ٹو موو اراؤنڈ کہ اچھا چلو بعد میں آئیں گے ہم آپ کے پاس
ویٹ کر لیں گے ایسا بھی نہیں ہوتا
سم ہاؤ کرتے کرتے میرے ریگولر اس وقت جو ریکارڈڈ انٹرویوز ہوتے تھے ایڈٹ کے بعد ہم کوئی 6-7-8 منٹ کے ہوتے تھے دیٹ کنٹینیوس لائیو واز 9 منٹ لانگ اور بالکل اینڈ میں مجھے جو ہے وہ او ایس ٹی ان کا جو اسرار نے گایا تھا وہ بھی بہت ہٹ ہوا تھا گانے کی وجہ سے بھی ایک پریزاد کا جو ایک امپیکٹ تھا وہ ایک دم مجھے نظر آ گئے اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ دو لائنز ہمارے لیے وہ کریں تو وی اینڈڈ دی لائیو آن دیٹ نوٹ
ہاؤ بیوٹیفل
سو اب میں ہر تھوڑے عرصے میں نا جا کے آئی وڈ جسٹ ری واچ دیٹ ویڈیو کیونکہ اب تک کا وہ ایکسپیرینس ہیز بین ویری ویری میموریبل اینڈ دین اٹ وینٹ وائرل ایز ویل بیکاز اس نے تو کبھی انٹرویوز دیے نہیں تھے لائیو تھا تو اسی وقت ایوری ون واچڈ اٹ ایک اتنا ہٹ ڈراما اور اسی وقت ایک انٹرویو آیا تو بس پہ پیپل اسٹارٹڈ میسجنگ می اینڈ آئی واز ان لاہور سو مائی مدر کالڈ فرام کراچی اینڈ آئی واز ٹیئری آئیڈ کہ پتہ نہیں بہت ہی کوئی اگین ڈنٹ پلان اٹ ڈنٹ لائک مجھے بس اچھے برے شاید ہر سینس میں کبھی گھر والے آپ کسی آرگیومنٹ میں وہ اگینسٹ بھی چلی جاتی ہے آپ کی بات کہ جو یو نو سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ دیٹ سم آؤٹ کم دیٹ آئی ہیو ان مائنڈ آئی وڈ جسٹ ٹرائی مائی بیسٹ مطلب شروع میں ریڈ کارپیٹ پہ یہ انٹرویو کرنا تھا بٹ اس وقت ہو ہی نہیں سکا اس وقت میں نے کہا احمد 5 منٹ اس نے کہا کہ بس 2 منٹ تو اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اینڈ پیچھے سے لوگ اور آنے لگ گئے اینڈ لائیو اینڈ ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آیا ابھی تو یو نو آئی گاٹ دس فیڈ بیک ابھی تو ویوز آنا شروع ہوئے تھے پیپل اسٹارٹڈ واچنگ اٹ احمد واز ناٹ دیئر اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو پل اٹ یو نو اس کے بعد لیکن اینڈ تک سارے ایپیسوڈس کا ریکیپ آیا پھر فائنل ایپیسوڈ اسکرین ہوا پھر پریس کانفرنس ہوئی دیٹ واز لائیو اس چینل کے پلیٹ فارم سے اور جو بھی کوشچنس میں نے احمد سے کرنے تھے وہ سارے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایڈریس کر دیے سو یو نو دین آئی ہیڈ آئی میڈ اسی وقت فالو اپ کوشچنس اور میں جا کے جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہو رہا تھا میں بالکل وہاں جا کے بیٹھ گئی اور آج ہی میں کسی کو بتا رہی تھی کہ میں پہلے سال بھی دس از ہاؤ آئی یوز ٹو بی اور 10th سال بھی دس از ہاؤ آئی ہیو بن کہ اگر مجھے کانٹینٹ چاہیے سو آخر تک میں ٹرائی کر لوں گی اینڈ دین یو نو اف یو ڈونٹ ٹرائی دی آنسر از نو
ٹرو آپ بی بی سی اردو کے ساتھ جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا یو کنڈکٹ انٹرویوز نوٹیبل آرٹسٹ ہوتے ہیں تو فرسٹلی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈو اور کیا انٹینشن ہوتی ہے وتھ دس سیگمنٹ اور کس طرح کا رسپانس آپ کو ملا ہے آڈینس سے ریگارڈنگ اٹ
اوکے سو انیشلی وین آئی واز اپروچڈ کہ کراچی سے کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ ہی ڈراماز شوٹ ہوتے ہیں بہت سارے لاہور بیسڈ ایکٹرز بھی یہاں موو ہو گئے تھے کراچی میں تو وہیں ساری شوٹنگ اور ایکٹرس تو کراچی سے کوئی ہو جو سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کرے فار بی بی سی اردو سو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ول دس پین آؤٹ کیا ایگزیکٹلی ہوگا کیا کرنا ہوگا ان کا بھی مجھے نہیں پتا کہ دے ہیڈ اے کلیئر پلان ان ہیڈ اور ناٹ کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ وہ لوگ کر نہیں رہے تھے ان کے پلیٹ فارم سے بہت سیلیبریٹیز کے یا ایکٹرس کے انٹرویوز نہیں آ رہے تھے سو مے بی دے ڈیسائڈیڈ کہ ہم کرتے ہیں یہ اور انہوں نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ لائک اف یو ناٹ کمفرٹیبل اور سم تھنگ تو اٹ کوڈ جسٹ بی دا ایکٹر ان دا فریم اور میں نہ اگر آنا چاہوں آج میں سوچتی ہوں کہ اٹ وڈ ہیو بین اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری ہیڈ آئی ناٹ کم ان کیمرہ بیکاز میں نے دیکھا کہ آپ کی جو ویژول پریزنس اینڈ بائی فیس اس نے بہت زیادہ یو نو اٹ میڈ اے لاٹ آف ڈفرنس ایک تو سیلیبریٹی اداکار کا انٹرویو ہے تو نیچرلی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے دین ایک اگر میجر پلیٹ فارم ہے تو اس کی یو نو لوگ کی فالوئنگ ہوتی ہے اینڈ دین آپ وہاں بیٹھے ہیں تو پھر لوگ آپ کو بھی دیکھتے ہیں آپ کو بھی سنتے ہیں سو سم ہاؤ بہت زیادہ ایک پرومیننٹ فیچر بن گیا کیونکہ انٹرٹینمنٹ سب کو چاہیے اینڈ میرا پہلا ہی جو انٹرویو تھا دیٹ کراسڈ 1 million ویوز سو دیٹ واز لائک سچ اے بگ ڈیل میرے لیے منال خان کا میں نے کیا تھا جب اس وقت ایک ڈرامہ آ رہا تھا जलन जिसमें पेमरा का नोटिस था कि यू नो रिलेशनशिप्स यू नो विद इन द हाउस होल्ड चीज़ें थोड़ी सी वो थी, तो मायू उस पर उन्होंने वो किया था. सो यू नो आई गॉट होल्ड ऑफ हर एंड आई इंटरव्यूड. अब टाइम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट कि उस वक्त एक इशू चल रहा है एंड यू नो आई गॉट होल्ड इन टाइम. तो वो पहले के ही वो आए और मैं कमेंट्स देख रही थी. दिस वाज ऑल न्यू फॉर मी. मतलब वीडियो जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म एंड दैट टू बीबीसी एंड सारी चीजें, इट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम.
बिल्कुल.
तो सीधा यू नो वो छक्का मारने वाले ही सिलसिला वाला हो चीज हो गई थी. सो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो यू नो वो एक्टर पे लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं वो सारे, वो 100 में से एक कमेंट मुझ पे होता था और 99 उस पे होते थे. और वो एक मैं दिल पे लगा के बैठ जाती थी कि क्या बदतमीजी, ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं. सो माय ब्रदर वुड टेल मी कि भाई अब ये कोई ये नहीं है, लाइक पीपल वुड वॉच तो कमेंट तो करेंगे, मतलब मिलियन लोगों ने अगर देखा है तो अब यू नो जिस मतलब मजबूत होना होगा अब कमेंट्स को ऐसे नहीं वो करना. सो खैर वो था. लेकिन ये कि पहले ही इंटरव्यू का इतना अच्छा वो आने लगा तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ लगने लगी. एंड फिर उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ करती गई और वो एक रेगुलर फीचर बन गया. एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी थी वो, लेकिन लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इट वॉज़ अ फ्रीलांस थिंग, क्योंकि वो एक रेगुलर वीकली यू नो एक इंटरव्यू होता था और हम लोग कुछ ना कुछ वो कर लेते थे. सो बेसिकली ड्रामों में जो अदाकार हैं मेल फीमेल बोथ, मोस्टली टीवी सेंट्रिक, फिल्म का म्यूजिक का भी करते हैं ज़्यादातर. अगेन जैसे हमने बात की टीवी ही सबसे बड़ा मीडियम है, तो उनके बेसिकली वन ऑन वन इंटरव्यूज़ मैं बीबीसी उर्दू के लिए करती हूँ. उनकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया हैंडल है उन सबके लिए. So, वो वन ऑन वन में ड्रामे के बारे में बात करनी है, उनके रोल के बारे में, और उसमें वही हम उनसे पूछ रहे होते थे. अब तो इतना डन एंड डस्टेड सॉर्ट हो गया बिकॉज मैं अभी कम से कम भी कोई 3-3.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, लेट 2020 की बात कर रही हूँ. सो के अच्छा भाई आपने प्रोजेक्ट क्यों चूज किया और सेट की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस तरह की उस वक्त चीजें होती थी जो लोग सुनना चाहते थे, बहुत पसंद करते थे, और थोड़ा सा कैंडिड कॉन्वर्जेशनल रखने की कोशिश करते थे. उससे पहले हमेशा मैं सोचती थी कि हमारा क्या वास्ता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें. मेरा काम है कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, मुझे कोई एक्सक्लूसिव मिल जाए कि ये फिल्म इसने साइन कर ली है. बट फिर विद टाइम, विद डिजिटल, विद दिस प्लेटफॉर्म के उर्दू में आप एक अवामी उस पे उसकी अपील है, तो अवाम क्या जानना चाहती है, तो इफ दैट एक्टर इज कंफर्टेबल तो हम पहले से पूछ लेते थे कि मीनू मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई मामला है, कुछ भी घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या उनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज सर्कुलेट हुई हो तो हम इस बारे में बात करेंगे. शादी रिलेटेड किसी से कुछ कर लिया, डिवोर्स रिलेटेड अगर किसी की वो है तो पहले से उनकी इजाजत से, क्योंकि लाइफ तो है नहीं उनका, अगर कम्फर्ट है. सो वी वॉन्टेड टू नो, क्योंकि जितना हम उनसे जान पाएंगे हमारे थ्रू उनके फैंस सुन पाएंगे, so they would want to watch it more. मेरा आज तक का most viewed I think था अतीका ओडो क्या उनके husband के साथ, that was 7 million plus views. और वो उनकी personal life के बारे में था, क्योंकि obviously शादी and you know एक certain age के बाद with both of them having kids उन्होंने शादी की, तो वो पूरा journey उनके लिए कैसे थी, उनसे पूरी permission लेके line up करके, that interview like really did so.
I think couples का बहुत करते हैं, जैसे बुशरा अंसारी के उनके हस्बैंड का भी बहुत हुआ था, लोगों ने काफी उनके बारे में.
समीना अहमद और मंजर सिभाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने किया था, लाइक 6 महीने मैंने उनसे फॉलो अप किया एंड फाइनली वो दोनों मुझे मिले और हमने बहुत एक यू नो हार्टफेल्ट सा इंटरव्यू था. एंड यू नो व्हाट, उस दिन इंटरव्यू के एंड में उन्होंने मुझे कहा कि काफी और लोगों ने रीच आउट किया था एंड सारी चीजें, एंड दे काइंड ऑफ गॉट कंफर्टेबल वंस वी हैड द इंटरव्यू. लाइक पहला इंटरव्यू जब रिकॉर्ड हो गया आफ्टर देयर शादी एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कि अब हम यू नो अब सबको रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई मॉर्निंग शो है, कोई कुछ है. सो आई टोल्ड माई मतलब पीपल एट बीबीसी उर्दू के अब कहीं भी इंटरव्यू इनका आ सकता है, दे माइट जस्ट स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, लेट जस्ट पोस्टेड एज सून एज पॉसिबल, उसके बाद पूरी दुनिया करे. बट यू नो मैंने 6 महीने फॉलो अप किया फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एंड इट वेंट लाइक इट, पीपल रियली लाइक्ड इट.
जैसे आपने शुरू में भी मेंशन किया दैट यू टीच एज विजिटिंग फैकल्टी टू द स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया साइंसेस एंड, तो मुझे बताएं कि टीचिंग कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मीडिया रिपोर्टिंग, एंड नॉट टू पिक एनी फेवरेट्स, लेकिन कौन सा लाइन ऑफ वर्क आपके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग है और लाइक विच फील्स मोर यू?
ओके, सिंस मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे बोलने का बहुत शौक है, सो दिस रिपोर्टिंग ऑन कैमरा एंड टीचिंग दोनों ही मोर मी, बिकॉज मुझे बस बोलने के लिए कि यू नो वट एवर आई कैन, वट एवर आई लाइक टू मैं बात कर सकूँ, शेयर कर सकूँ. बट टीचिंग मुझे बचपन से बहुत शौक था टीचर बनने का. हमारे नेबरहुड में जितने भी बच्चे थे मैं टीचर बनती थी, क्योंकि आई हैड द ब्लैक बोर्ड, तो मैं टीचर बनूंगी और बाकी सब स्टूडेंट्स बनेंगे. बट बाय द टाइम मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, जब टीचिंग बज़ाहिर लोगों को लग रहा था कि इज़ वन गुड ऑप्शन टू गो फॉर इंग्लिश में मास्टर्स एंड यू नो साथ में आगे कंटिन्यू करना, आई वाज लाइक नो इट्स वेरी बोरिंग, बट मैंने हमेशा बहुत फैंसी किया है टीचर बनने को. यू नो, मैं खुद बड़ा अपील होती थी. ऑब्वियसली आपका दिमाग, आपके पढ़ाने का तरीका तो बहुत मैटर करता है, लेकिन मुझे लगता था कि टीचर की प्रेजेंटेबिलिटी बहुत मैटर करती है. हम एक बिल्कुल एक नींद में कोई, या बिल्कुल बोरिंग उसमें, या ऐसे यू नो डल उसमें मूड में कोई टीचर आता था ना, तो हम खुद भी डल फील करते थे. सो वो टीचर्स जिनको देख के एकदम से आपका ऐसे दिल चाहे, या वो क्लास में आई है तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, तो मुझे लगता था कि ऐसा टीचर होना चाहिए. तो स्कूल में भी एक टीचर है जो अभी मैं बात करते हुए रिकॉल कर रही हूँ उनको. यूनिवर्सिटी में एक टीचर थी, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी क्लास में भी उस तरह की वो करती हूँ. सो मुझे था कि ऐसा हो प्रेजेंटेबल. सो यू नो आई वुड ऑलवेज बी वेरी एक्साइटेड. मैंने यूनिवर्सिटी लेवल से ही पहली दफ़ा पढ़ाना शुरू किया. जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मैं इंग्लिश के कोर्सेज पहले पढ़ाती थी, अब मीडिया साइंसेज पढ़ाती हूँ. सो यू नो आई वांटेड टू बी प्रेजेंटेबल, एक्टिव, कि बच्चे भी उतने ही एक्टिव रहें. और अगर 8 बजे की क्लास है और आपका डिस्टेंस और सब देखने के बाद भले मैं 2 घंटे पहले उठ के आराम से तैयार हो कि मैं फ्रेश हूँ. एक टीचर थी हमारी जो कहती थी कि ये भी एक एक्ट है. मे बी यू कुड बी गोइंग थ्रू एनी थिंग इन लाइफ, यू मे नॉट फील लाइक वेकिंग अप टूडे, यू मे बी अनवेल, लेकिन जब आप यहाँ आके खड़े हुए हैं तो लाइक यू आर द टीचर एंड देन यू जस्ट हैव टू शो अप. सो उस तरह से मैं इंजॉय दोनों करती हूँ. बट आज भी आई स्टिक टू दिस वो के फुल टाइम टीचिंग पता नहीं बोरिंग, मतलब नथिंग अगेंस्ट टीचर्स ऑफ कोर्स, बट मैं खुद को वो यू नो यू फील्ड में काम करना, लोगों से बात करना, रिपोर्टिंग करना, कुछ चीज़ें जो मैं चाहती हूँ कि थोड़े ज़्यादा लोगों को पता चले थ्रू माई मीडियम या बिकॉज ऑफ बींग अ जर्नलिस्ट, तो दैट वुड ऑलवेज यू नो बी ऑन टॉप बींग अ जर्नलिस्ट. एंड देर इज अ सर्टन लेवल ऑफ प्रेस्टीज दैट आई फील एंड आई रियली लव दिस अबाउट माई प्रोफेशन, जिसकी वजह से मैंने बहुत लाइन्स क्लियरली ड्रॉ करने की कोशिश की है कि जर्नलिज्म को इंटैक्ट रखना है. इसीलिए मैं टिकटॉकर नहीं बन पा रही हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब नहीं अपना लॉन्च कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत स्ट्रांगली ये जर्नलिज्म और वो एथिक्स और डायनामिक्स इतनी ज़्यादा इंग्रेन है कि द डिजिटल वर्ल्ड हैज़ लाइक वेरी सीरियस कॉन्ट्रडिक्शंस विद दैट. सो जर्नलिज्म वुड ऑलवेज बी ऑन टॉप. इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्डिंग आई थिंक अगर आप मॉनिटरी मीन्स में बात कर रही हैं तो फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेरे लिए जर्नलिज्म ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा है. क्योंकि एक तो मैंने फुल टाइम कभी परसू भी नहीं की टीचिंग, लेकिन मैंने जो अतराफ में देखा है तो इट्स नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब आइदर, अनलेस देयर इज़ अ सर्टन यू नो कोई इदारा ऐसा या आपकी एक सर्टन एक्सपर्टीज और आप एक पॉइंट पर आके यू गेट दैट पोजिशन. टीचिंग मेरे लिए जो है इट्स मोर रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो माई ओन सेटिस्फैक्शन, कि मैंने जो सीखा है प्रैक्टिकली, अगर मैं 4 लोगों को, स्टूडेंट्स को, किसी को भी वो करूँ, उसमें से एक भी कोई चीज़ देके यू नो दे लुक अप टू समथिंग एंड दे, तो इट्स नॉट लाइक मैं वॉलंटियरली टीच कर रही हूँ. कुछ सेशंस होते हैं, आप चाहते हैं वन ऑफ सेशंस दैट आई डू वॉलंटियरली, वो तो एक बेसिक सी बात है, लेकिन इट्स नॉट एज मच पेइंग के मतलब इसके लिए कर रहे हैं कि यू नो यू विल मेक सम एक्स्ट्रा गुड सम ऑफ मनी, इट्स नॉट दैट. सो वो ओवरऑल पैकेज में हमेशा ना, पहली जॉब भी जब थी जिसमें अमाउंट अपेरेंटली बहुत कम ही लगता था और वो कम लगने से ज़्यादा वो रेजेज और होते नहीं हैं जो वो एनुअल रेजेज का हमें लारा देते हैं आई वुड से व्हेन वी जॉइन देम, लेकिन मैं उसको हमेशा ना कंप्लीट पैकेज देखती थी कि द नेटवर्किंग, द प्लेसेस यू आर गोइंग टू गो टू, जो आपका एक्सपोजर हो रहा है, फिर कोई अगर ऐसे ऑफिशियल ट्रिप्स हैं जो आप काम भी कर रहे हैं, यू गेट टू गो एज वेल, एक्सपीरियंस दैट एज वेल, वो सब कैलकुलेट करके मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी फॉर गुड 5-6 ईयर. जब आपको लगता था कि रेज एज सच नहीं हो रहा, लेकिन ये सब मौके मिल रहे हैं जो उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वो सब काम आ रहा है और काम आया. तो मैंने कहा हर दिन रैंट करूं बैठ के, तो फिर इससे अच्छा ये जॉब छोड़ दो. सो आई गेव माई सेल्फ रीजन कि भाई डोंट जस्ट लुक एट द मनी और द अमाउंट, इट्स द एंटायर पैकेज, कि इस जॉब पे, यहाँ इस सीट पे, इस डेस्क पे बैठने की वजह से यू आर गोइंग टू दीज इवेंट्स, यू आर कवरिंग देम, यू आर गेटिंग अ बाय लाइन, पीपल आर नोइंग यू, यू आर बिल्डिंग नेटवर्क्स, यू आर कॉन्टैक्ट्स. तो आई थिंक उस तरह अगर देखते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, काम तो करना ही है, तो मोटिवेट करना खुद को या अभी भी खुद को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है.
आई थिंक आई लाइक द फैक्ट कि आप खुद से कन्वर्स करती हैं. बहुत फॉर्चुनेट होते वो लोग जो बैठ के कर पाते, क्योंकि कुछ लोग इतने देयर थॉट्स पजल देम कि उनको समझ नहीं आती कि हम किससे बात करें, खुद से बात करना तो दूर की बात. तो मुझे अच्छा लगा ये जान के कि यू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, और ये बहुत ही हेल्दी मैसेज है कि हमें करनी चाहिए. ऑल्सो आई रेजोनेट विद यू जब आप पूरा बात कर रही थी, बिकॉज मुझे भी बचपन में बहुत शौक था मैं टीचर बनूँ, एंड यू नो व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू टीच इंग्लिश, और बस दिमाग में वही सवार था. बट व्हेन आई ग्रो अप वाज लाइक नहीं, मुझे ना कैमरा पे आना है, लाइक नॉट इन दैट वेरी वो वाला नहीं था, बट लाइक कुछ तो होगा आउट देयर. उस वक्त मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थी, लाइक कुछ तो होगा बट आई कुड बी ऑन कैमरा, बट मुझे था कि कोई एक तरीका हो जिसमें दोनों चीज़ें ब्लेंड हो जाए, कुछ सिखा भी सकूँ, कैमरा में भी आ सकूँ. सो आई फील लाइक दिस प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ दोज स्पेसेस जहाँ पे मैं कुछ एक बंदा भी सीख लेना, मेरा काम वहाँ हो गया, आई एम सैटिस्फाइड. तो या दैट इज़ वन थिंग. ओके, मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूँगी, बट आई वुड लाइक यू टू शेयर के हाउ डू यू एनविजन के जो जर्नलिज्म की दुनिया है और रिपोर्टिंग की, वो 10 years फ्रॉम नाउ कैसी होगी? बिकॉज वी आर ऑलरेडी लिविंग इन एन AI जनरेटेड वर्ल्ड, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं या जा चुके हैं, हम उसमें हैं, हमें रियलाइज नहीं हो रहा.
आई स्टार्ट विद द लैटर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जिसे आपने AI मेंशन किया. हम पिछले दिनों अ रूम फुल ऑफ जर्नलिस्ट वी वर हैविंग दिस डिस्कशन के मेरे इर्द गिर्द लोग, मैं जब कहती हूँ कि मुझे तो ChatGPT बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे यू नो आई डोंट इवन यूज इट या आई ट्रेस इट, जब कोई मैसेज भेजता है मुझे पता होता है कि वो वहाँ से जनरेट हुआ है. सो लोग मुझे टीज करते हैं कि हाँ ये तो आपकी नौकरी पर लात मार देगा ChatGPT, इसलिए यू हैव दिस बायस. एंड देन इन अ रूम फुल ऑफ दोज जर्नलिस्ट वी वर हैविंग डिस्कशन कि जर्नलिज्म इज नॉट वॉट ChatGPT कैन डू, नो मैटर आप उसको कितना ही बता दें कि क्या करना है. ऑब्वियसली कॉन्टेंट राइटिंग, कॉन्टेंट जनरेशन, दैट्स अ डिफरेंट वो. एंड एक पॉइंट पर अगर 10 लोग जो है जनरेट कर रहे होंगे तो वो 10 का 10 कॉन्टेंट एक ही लगेगा. तो कम अज कम वहाँ एक रिलीफ था कि अच्छा भाई जर्नलिज्म नहीं कर रहा ChatGPT, तो हमारी नौकरी सिक्योर रहेगी. रिपोर्टिंग नहीं करेगा वो, जाके 3-4 वॉइस इन लोगों से बात करना. बट 10 years फ्रॉम नाउ अगर आप पूछें तो आई थिंक मेरा इंस्टेंट मेरे जहन में रिस्पॉन्स ये था कि जर्नलिस्ट की तादाद बहुत कम हो जाएगी. और इससे मेरा मतलब यह है कहने का कि जो एक्चुअली जर्नलिज्म कर रहे होंगे, ऑलरेडी इतनी लाइंस ब्लर हो रही हैं जो सारी हमने गुफ्तगू की और वैसे भी हम देख रहे हैं. फिर प्रेस फ्रीडम की वजह से जो बहुत सारे मामले आते हैं, जो पैशनेट वाकई जर्नलिज्म को लेके हैं उनमें से जरूरी नहीं है कि लाइक हो सकता है सम पीपल वुड गिव अप बिकॉज दे आर नॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, तो वो क्यों चाहेंगे. उन्हीं में से जो रह जाएंगे जो कुछ ज़्यादा ही पैशनेट होंगे और जिनको ऐसे मौके या इस तरह के वो मिलते रहेंगे कि वो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस कर सकें क्रिएट, सो द नंबर वुड श्रिंक आई थिंक ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड जो है जर्नलिज्म का उसमें, क्योंकि ये मजीद एक्सपैंड होगा मुझे लग रहा है जो लाइंस ब्लर हुई हैं हमारी कॉन्टेंट क्रिएशन को लेके, डिजिटल प्रेजेंस को लेके, कि अब ऑलरेडी वो खुद ही एक्टर अगर अपनी जिंदगी पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे तो मैं उसकी जिंदगी का एक्सेस देके मुझे क्यों इदारा पे करेगा कि उसने तो खुद ही पोस्ट किया, आपने क्या हमारे लिए ऐसा किया है.
बिल्कुल.
या अगर वो वीडियो वहीं से आ गया तो आप वहां क्यों गई थी कैमरा पर्सन के साथ. सो यू नो आपका वो इतना कम हो जाएगा, देयर वुड बी वेरी फ्यू पीपल डूइंग इट. बट आई थिंक द वे फॉरवर्ड शुड बी और कुड बी के बिगर लेवल पे, इदारे के लेवल पे या जो भी इनिशिएटिव होता है जिनका भी, क्योंकि हमारे अक्सर ये सीटिया निज़ाम पे बात आती है ना कि वो कन्वेंशनल वही फॉलो करना चाहते हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं और वो इनोवेशन का, क्रिएटिविटी का उतना रूम नहीं देते, तो वो यंगर लॉट वो चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाता. यंगर लॉट भी कुछ ज़्यादा ही सुस्त और इंस्टेंट फेम और नेम के उसमें लगा हुआ है, वो दोनों तरफ यू नो ताली दोनों हाथ से बज रही है. तो उसमें यह है कि जो डेडिकेटेड लोग अगर वाकई यू नो टू कीप अप, like to keep doing journalism, to sustain journalism, to not let it die, वो लोग अगर सही तरह से adapt कर लेते हैं, modify कर लेते हैं कि अब जो हम print में हैं या TV पर, क्योंकि TV भी मुझे लगता है is going to die, news channel बैठ के अब कितने लोग देखते हैं जाके, जब social media आपके smartphone पे सब कुछ आपके पास है. so digital पे अगर वाकई आप equip कर ले कोई सही यू नो कोई लेबल या जो इतना अफोर्ड कर सकता है हर तरह से ऑन अ बिगर वो, देन यू नो दैट कैन सेट the benchmark for people to follow. यहाँ ये है कि अगर हर कोई आसानियाँ और instant उसके पीछे है तो मतलब I don't see a lot of hope then.
True. On that note, I would like to conclude our conversation. It was very delightful talking to you. बहुत मज़ा आया. I think it was a nice blend of बहुत ही crisp stories तो मिली in the entertainment sector, but उसके अलावा journalism को भी हमने एक different lens से देखा और future हो गया, हमारा present हो गया. So that was very unique. सो थैंक यू, अब आपने इतना टाइम दिया और ये कॉन्वर्सेशन. आई थिंक आप जो लोग देख भी रहे हैं उनको भी, आई एम श्योर वो भी कुछ बोरो करेंगे. एंड आई विल कैच यू इन अनदर एपिसोड वेरी सून. टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़.